নিজের কাছে প্রকাশ পাবে। তার জন্য পূজ্যপাল পরম পণ্ডিত নারায়ণ মহারাজ যে সম্বন্ধে তাদের গুণাগুণ ভক্তিদার করবেন, তাদের গুণাগুণ সমর্থন বা তার সমালোচনা করবেন। আমার যে দুর্গতা আমি আজ পর্যন্ত যে তত্ত্বে গুণাগুণ উপলব্ধি করতে পারছি না, সেই তত্ত্বটিকে তারা অত্যন্ত সহজভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত করবার চেষ্টা প্রকাশ করেছেন, এর জন্য ধন্যবাদ। এবং এই প্রকার চেষ্টাকেও আমরা স্বাগত জানাতে পারি। কিন্তু আমরা সাথে এই একটা কথা শুনছি, যদিও সে কথাটি খাতা খাওয়াতে সেই কথাটি থাকা সত্ত্বেও আমাদের এই প্রচেষ্টা কোন রকম হ্রাস হচ্ছে। শাস্ত্রে বলছেন, নায়মাত্মা প্রবচনে না লম্ব না মেঘয়া না মৌ না সুদিন। এই প্রকার প্রবচনের দ্বারা সেই বস্তুকে লাভ করা যায় না। তো বাণীটা আছে, বিপত্তি শক্তি আছে, বুদ্ধি শক্তি আছে, বাক্যের দ্বারা আমরা সুন্দর প্রকাশ করতে পারি, তাছাড়াই আমরা সেই বস্তুতে অধিকার লাভ করে ফেললাম। এই প্রকার পণ্ডিতগণ মনে করতে পারে, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি দ্বারা সেই বস্তু সমাজের প্রতি কখনো সফল নয়। জমি পরিচালনাটি যেন লোভ অজ্ঞানী তত্ত্বকে আশা করি আপনারা এই যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দিতে পেরেছেন, যা আপনারা আমাকে কৃপা করে যদি কোনোদিন বোঝান তবে আমি বুঝতে পারব। কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত সেই অজ্ঞানী তত্ত্বকে বুঝতে পারি। আপনারা সকলে অনেকাংশে বুঝেছেন, কেউ সর্বাংশেই বুঝে গেছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি আপনাদের কি করে শিক্ষিকাই জ্ঞান দান করবো যে আমি নিজে বুঝতে পারিনি। তবে আমরা শুনছি ওদের আপত্তি হয়েছে সেই অজ্ঞ জ্ঞান সম্বন্ধে নয়, তিনি যদি দয়া করে আমাদের কিছু বলেন। অজ্ঞান সম্বন্ধে তো যা শাস্ত্রে বলা আছে সেগুলি বোঝবার চেষ্টা করছি, নূতন করে আর সোমবার শুভেচ্ছা নাই। তবে স্বজাতীয় বিজাতীয় সম্বন্ধে আমার তো বিশেষ কিছু সেরকম আলোচনা নাই। তবে এই সমস্ত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদটা যে নাই এই কথা যে বলা হয়, কিন্তু যে বস্তু নাই সে বস্তু আবার নাই বলে কি করে বলা যায়? সুতরাং ভেদ আছে বলে ভেদ নাই বলা হচ্ছে। সুতরাং ভেদটি উড়িয়ে দেওয়া কেমন করে সম্ভব সেটা আমরা বুঝতে পারছি। অভেদ এ কথাই তো বলা হয়, কেন ভেদ আছে বলেই অভেদকে বলা হচ্ছে। বিশেষ করে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার তত্ত্বকে অচিন্ত ভেদা ভেদ ভেদ অভেদ এই দুই স্বীকার করি সেই তত্ত্বকে তিনি স্বীকার করছেন। সুতরাং তত্ত্বের বাইরে কিছু তিনি বলেছেন বলে কি কাউকে আমি তো জানি না। সুতরাং তত্ত্ববস্তু বলতে গিয়ে অজ্ঞায় জ্ঞান কি তা ছাড়া তা আমার চালনা নাই। যদি কিছু থাকে আমরা কিছু বার মহারাজের কাছ থেকে শুনবে শুনলে ধন্যবাদ। এই যদি আমার বক্তব্য আমি মানতে হবে। আজ ফেরা পৌঁছে নিচ্ছে।
লক্ষ্মী আর কৃষ্ণ পুত্র বিনেকে দিয়ে জগন্নাথ পুত্র বিনেকে দিয়ে দেন। শিষ্য সামনে উত্তর নাই সবই শিখে উপস্থিত হওয়ার সর্বজ্ঞান সত্যকে শুনে দিন আর উন্নত জাতির সদস্য জাতি জাতির किसी भी विषय में हम उपलब्धि करके ही कुछ कहेंगे ऐसा कभी बोलिए हमारे विचार किसी भी विषय में हम उपलब्धि करके ही हम बोलेंगे और ये क्या चीज है हम समझ लेंगे तब कहेंगे ये बात जगत में आ सकता है। इसलिए हमको इस विषय में हम जानते हो चाहे नहीं जानते हो जानने की चेष्टा कर सकते हैं। गुरु परंपरा की धारा हमारी उपलब्धि हो चाहे न हो किंतु आमनाय के द्वारा अमनाय पराम अमनाय पराम जो कहा गया है गुरु परंपरा में जो कहा गया है इसको हम अभ्रांत सत्य मान करके वहीं से हम अपना पैर उठाएंगे और यदि हम सब समझ करके अब प्रभु के विषय में बोलेंगे तो फिर साधन नाम का क्या कोई चीज रह नहीं सकता है। हमारे विचार हम ले नहीं मूर्ख है तत्व ज्ञान भी ले किंतु हमारे गुरु जी ने और गुरु परंपरा ने जो कुछ कहा है वो अभ्रांत अमित सत्य सब कुछ बदल सकता है किंतु ये नहीं बदल ऐसा विश्वास लेकर के परमात्मा आदि में हमको चलना चाहिए। जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास है ये हम सबसे कहते हैं ये मैं कृष्णदास उपलब्धि करके कहते हैं हम जीवात्मा है कि शरीर में आत्मा है हम शरीर नहीं है उपलब्धि है किंतु हमारा आचार्य ने हमारी गुरु परंपरा ने कहा है इसलिए इसको मान करके हम चलते हैं। इसलिए हम ले मैंने बात सत्य है किंतु हमारे पास एक बड़ी सारी रोशनी है दिव्य प्रकाश है वो है गुरु परंपरा की धारा उसमें हम कुछ करते हैं। इसलिए उसी धारा को आलोचना करने में हम भले ही उपलब्धि नहीं हो तीनों की भांति जगत में हमको प्रवेशन करना है और अपने भी उपलब्धि करना है। तीनों की भांति माने क्या गुरु हर या तारो एक देव ये कहना पड़ेगा ये हम कृष्णदास हैं ये सब माया है ये सब नस्कर है जीवात्मा नित्य है परमात्मा उसके प्रभु है ये तो हम उपलब्धि ये कभी तो कहेंगे और ये कहेंगे उसी गुरु परंपरा की के ऊपर मिलने पड़ेगा। इसलिए हम उपलब्धि करके ही कहेंगे ये बात को हमको और ठीक दूसरी बात गुरु जी के मुख से हमने सुना है संक्षेप में जो एक बात जो हमने कुछ समझा मैं नहीं समझता कि हमारी बात सत्य ही होगी। ये जो गुरुवर्ग है इन लोगों से बहुत कुछ सुना है गुरु जी से ऐसी मुख्य भी जाए सदस्य प्रजाति विजाति के भेद के संबंध में गुरु जी कहते हैं यद्यपि चैतन्य महापुरुष जी ने अचिंत भेदा भेद कहा है जब भेद भी होगा अभेद भी होगा इसलिए भेद भी जरूर है तब तो कहा नहीं तो कहा तो क्या किंतु गुरु जी कहते हैं भेद किसको कहते हैं जब कोई दो पृथक स्वतंत्र सत्ताशील वस्तुएं हों या दो से अधिक पृथक सत्ताशील जिनकी सत्ता एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है तो उसमें भेद नहीं है। उसमें भेद जैसा बताने वाला जो भाव होता है उसको कहते हैं वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य और भेद एक नहीं है। वैशिष्ट्य कहते हैं एक ही वस्तु में जो भेद का भान करता है दिखलाता है भेद का भान नहीं भेद नहीं है किंतु भेद जैसा दिखता है उसको कहते हैं वैशिष्ट्य और दो स्वतंत्र सत्ताशील वस्तुओं में वो भेद इस विश्व में ये सब परमात्मिक विश्व में दो कोई चीज भी नहीं है जिसकी सत्ता पृथक पृथक हो
বন্ধ কর দিস না, একটু আমি বলবো।
হ্যাঁ
একটু আমি বলবো,
স্বামী বলেননি তা তো
না,
মান্য করা যায়। গুরু সত্তা নেই হ্যাঁ, দূসরে ভেদ নেই হ্যাঁ, স্বতন্ত্র গুরু সত্তা নেই হ্যাঁ।
ये गुरु जी की बात हमने कहा और लिखा है गुरु जी का
आपने कहते और छात्र में हम लोग भी तो गुरु जी की बात सुने और छात्र में भी कहते हैं वो भी गुरु की बात है और स्वयं भगवान जो कहते हैं वो भी गुरु की बात है। स्वयं भगवान जो नहीं है उसे जानते हैं, जानते भी है स्वतंत्र नहीं, जो एक जरूरी उन्हें जानते हैं, जानते नहीं पाते हैं स्वतंत्र के राजे आज ग्रामीण
क्या काम है समझ लो।
कृष्ण के अतिरिक्त शिष्य के लिए सम्मान के लिए कर रहे हैं न सब समय न सत्य कार्यक्रम करण चिष्यति न समस्त अधिक दृश्यते पारूयते स्वभाव की ज्ञान बनती है। वस्तु एक ही है, सत्य एक ही दो नहीं, उसके समान और कोई है नहीं, दूसरा कोई नहीं और उससे अधिक भी नहीं। वस्तु में कुछ है जैसे पत्व में चैतन्य महाप्रभु जी में कौन से पत्व माना गया और पत्व में भी रामानंद जी कहते हैं कृष्ण तत्व, राधा तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व लुटाते हैं किंतु फिर भी एक ही तत्व है। सुधानंद जी ने शास्त्रों के आधार पर जी गोस्वामी का ये विचार लेकर के बतलाया। जी गोस्वामी जी सारा संभागिनी ने और सत्य संदर्भ में एक अच्छी तरह से दिखलाया जो भगवान में स्वगत स्वजाति और त्रिजातीय कोई चीज नहीं। एकम एवं परम सत्यम स्वभाविका अचिंत सत्य स्वरूप सदरूप वैभव जीव प्रधान रूपे में चतुर्था होते एक ही प्रसंग अपनी स्वाभाविक अचिंत शक्ति के प्रभाव से चार रूपों में नित्य अवस्थित वही है स्वयं रूप व कृष्ण भजे भजन नंदन यही अद्वैत ज्ञान परतत्व की चरम सीमा है। यही एक परतत्व और उसमें जो सद्रुप सद्रुप वैभव अथवा जो बताया गया वो कहां से बलदेव प्रभु से लेकर और कर्णाधिशाही गर्भदशाही और क्षूर दशाई तक यहां तक ही शेष को भी ले और गुणावसाई इत्यादि को भी ले यहां तक सब तदेकात्म रूप के अंतर्गत है। ये कोई भी कृष्ण से भिन्न नहीं है, या तो ये कृष्ण के वैभव है, प्रकाश है, अंश है, कला है, गुणावतार है या और बाकी जो कुछ है विभूतियां हैं जैसे कपिल देव जी इत्यादि नारद जी व्यास नारद इत्यादि। इसलिए कोई भी कृष्ण से पृथक स्वतंत्र सत्ता की वस्तु नहीं, ये हुआ है वस्तु सत्य में शक्ति नाम सत्य में। और विशेष करके जो शक्ति के तो प्रकाशित हैं जैसे जी सतु वैभव हो गया और ये जी अप्रधान जिनको इस जगत में हम लोग देखते हैं शास्त्रों में हम पढ़ते हैं जैसे अनंत जीव है तो राष्ट्र लाख जीवन में धर्म कर ये देखते हैं ये भगवान से पृथक दिख पड़ते हैं। भगवान है सचिदानंद और पूर्ण है, जीव है अणु, जीव है दास वो है प्रभु, वो सब में ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान स्वरूप होते हैं, अच्छाविक ज्ञान के रूप में भी दिखते हैं। ये बद्ध भी हो सकते हैं, वो कभी बद्ध नहीं है। वो माया के सब में प्रभु है और जीव माया के दास भी हो सकते हैं। ये जो जीव है ब्रह्म से अलग है नहीं, वो उनके शक्ति के द्वारा प्रशस्ता शक्ति के द्वारा वो प्रकाशित है, वो परिणाम है शक्ति, वो शक्ति ही उस रूप में रूपांतरित हुई है। इसलिए जीव ही भगवान से कोई पृथक भेद वाला वस्तु नहीं। और आ गया ये जो पेड़ पौधे जीव जगत और हमारा शरीर आदि को ब्रह्मांड का शरीर देखते हैं, ये सब चीजें क्या है? ये माया शक्ति के जड़ा प्रकृति के ये सब परिणाम है। ये भी भगवान की शक्ति ही है, इसलिए इनसे भी भगवान का कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं तो असल में भेद और अभेद एक ही चीज से कहा गया, शक्ति और शक्ति मानने में ही केवल भगवान में तो कोई भेद नहीं। बाकी ये जो दिखता है भेद जैसा, ये इनके साथ में भेद भी बतलाया कुछ अंशों में, उसका व्यक्तित्व वैशिष्ट को लक्षण कर। इस स्वरूप में जो दार्शनिक भेद है, भेद में नहीं, स्वगत में भी नहीं आएगा, स्वजाति में भी नहीं आएगा, ये आएगा किसमें? वैशिष्ट में जो भेद जैसा दिखता है उस पर विचार करते। ये अचिंत शक्ति के परिणाम है जीव और जगत, इसलिए भी इनके साथ में भगवान का संबंध भेद नहीं है, वैशिष्टता है। इसे रामानुज ने रामानुज का भी विचार चैतन्य महाप्रभु जी ने थोड़ा सा दिया, मध्वाचार्य का भेद वाला भी विचार कुछ लिया, निम्बाचार्य का भेदाभेद का भी कुछ विचार लिया, किंतु और सब आचार्यों में शक्ति और शक्तिमान के ऊपर में विचार नहीं किया गया। वो शक्ति का परिणाम जीव और जगत को नहीं बतलाया गया, वो वस्तु परिणाम बताया। शंकराचार्य ने खंडन किया, हमारे जीव गोस्वामी ने भी इस विषय का खंडन किया, किंतु दिखता है मनुष्य है, किंतु भेद। इसीलिए श्रीमद् भागवत में उपनिषदों में जिनको ब्रह्म कहा गया, ये ब्रह्म जो है और परमात्मा ये अव्यय ज्ञान तत्व है, किंतु जीव और ये जड़ जगत ये अव्यय ज्ञान तत्व नहीं है। इसलिए उस श्लोक में कदम की तत्व तत्व जब ज्ञान अद्वैत तो वो अद्वैत ज्ञान भगवान भी है, अद्वैत ज्ञान परमात्मा, अद्वैत ज्ञान परमात्मा ही, किंतु पूर्ण जो परिपूर्णतम जो प्रकाश है उसका सीमा तक वो भगवान है और यही पूर्णतम प्रकाश है। ब्रह्म है जो वो आंशिक विकृत प्रतिफलन है और परमात्मा जो है वो आंशिक उनका आरोप है। ब्रह्म और परमात्मा और भगवान, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया। क्या जैसे पानी है, पानी मूल वस्तु है, मान लो पानी ही तीन रूपों में दिखता है, एक कुहरा, एक दिखता है बर्फ और एक दिखता है पानी। कुहरा पानी हुआ ऐसा नहीं कहा जाए, बर्फ पानी हुआ ऐसा नहीं कहा जाए, पानी ही बर्फ या कोहरा हुआ है, क्योंकि पानी मूल चीज है ना। वैसे स्वयं जो भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण है, ब्रजवादे द्विज श्याम सुंदर मुरलीधारी, यही अव्यय ज्ञान तत्व की सीमा स्वयं भगवान है और उन्हीं का आंशिक प्रतिफलन केवल तीनमय भाव का अनुचित अनुनय विकृत यह है ब्रह्म। और यह है उपनिषदों के उपासित में उपनिषदों के लिए ब्रह्म कहा गया। और जो परमात्मा है योगियों के जो ध्यान गम्य है अंगुष्ट परिणाम जो बतलाया है परमात्मा के लिए कहा गया, यह भी कृष्ण के अतिरिक्त नहीं है। प्रजनन का अंश किंतु योगियों के द्वारा ध्यान में जो देखे जाते हैं वो भी सत और चित्त के आंशिक में क्यों नाश प्रकाश, उसमें आनंद का प्रकाश नहीं, इसलिए वो अद्वैत ज्ञान परतत्व होने पर भी पूर्णतम उसके प्रकाश को ही माने। इसी समय इसी तरह से सर्व संवादि में इस विषय का की आलोचना की गई है। अनुभूति हम लोगों को नहीं है, ये तो सुखेर पठन, जैसा महाराज जी कह रहे हैं बात ठीक है, ये सुखों का पठन है, किंतु साधन में जैसा भाव होगा सिद्धि में भी वैसा ही भाव होगा। जागृति
भावना,
अभी साधन में हम जिस चीज को लेकर के चलेंगे पढ़ेंगे गुरु कर्मों का विचार लेकर के, तभी भगवान अनुग्रह करें हमारे ऊपर में, गुरु पाद पद्म और ये वैष्णव लोग अनुग्रह करें, जो हम लोग इसी विषय को सिद्ध करते हुए आगे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हुए चले और इसकी उपलब्धि हम लोगों के अंदर में हो, वो लोग उपलब्धि कराएं, इसी की प्रार्थना लेकर के कोई पंडित होने के लिए और कोई दिग्गज विद्वान होने के लिए पंडित से दिखलाने के लिए ये सब नहीं, किंतु दीनहीन होकर के इन चीजों को हमारे हृदय में सूची हो और धीरे धीरे हम लोग केवल मात्र प्रेम प्रयोजन है उसके तरफ में बढ़ने के लिए हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं, नहीं तो साधन नाम की चीज क्या रह जाए। आखिर तो कुछ न कुछ तो साधन करना है, उनकी कृपा तो मांगना है, हम चिन्हन भी तो करेंगे, नहीं तो मन उधर कर जाएगा, इसलिए दो चार बातें इसके संबंध में हम शुरू हो, ये वैष्णव लोग ठाकुर लोग दयाल कृपा करके अनुग्रह करें, इन सब चीजों की उपलब्धि हो, इसके संबंध में और भी हम लोग पीछे बातें करेंगे। आज यही सब विषय को भी प्रसन्न समाप्त करो और मेरा संबंध में दो चार बातें मैं तेरा पंचमी आज द्वितीया तरफ आरम्भ हुआ, द्वितीया तरफ आरम्भ हुआ, द्वितीया लिया द्वितीया और चतुर्थी आज पंचमी, लक्ष्मी भी आज चार दिनों से अकेली है, गृहिणी है चार दिन तक अकेली, मन नहीं लग रहा, न झगड़ने के लिए कोई व्यक्ति है न प्रेम करने के लिए व्यक्ति है, और उधर कृष्ण आनंद से चले गए हैं, बल्कि यहाँ पर दो एक थे और ब्रज में कितने हो गए, यहाँ समस्त गोपियां मिल गई, नंद बाबा मिल गए, यशोदा जी मिल गई, गोपियां मिल गई और वहां पर बड़े आनंद के साथ में इतिहास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को कोई पता नहीं ये कहाँ गए, कह करके गए जी अभी परसों आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, नहीं तो परसों आ जाऊंगा, कल भी चला गया परसों भी चला गया, वो आए नहीं, आज पांचवा चतुर्थ दिवस है। नारद जी कहीं घूमते घामते पहुंचे, ऐसी स्थिति में ही नारद जी पहुंचा, नारद जी ने उनको जब देखा तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने भड़का दिया और मामला भड़का दिया, जैसे तुमको तो अकेली रख करके वो तो चले गए हैं और कहाँ गए हैं, तुमको कहें कि बगीचे में टहलने के लिए जा रहा हूँ और मन लगाने के बाद में फिर लौट आऊंगा, किंतु वो वृंदावन सीधे पहुंचे हैं, बीच में कहीं नहीं रुके और वहां पर पहुंच गए हैं, वृंदावन पहुंच गए, उन ग्वालियों के पास में पहुंच गए, पशु का बड़ा रोष हुआ, फिर अपने दिन आई राजा काशी मिश्र कहे राजा सजत्न करिए, कल नहेरा पंचमी हमें लक्ष्मी का विजय ऐसे उत्सव कर जैसे कहूँ नहीं, राजा ने अपने गुरु पुरोहित को काशी मिश्र को आदेश दिया, आज से पहले जैसा कभी नहीं उत्सव हुआ हो ऐसा हमारे राज्य में खजाने में जितने स्वर्ण और हीरा मोती जवाहरात के अलंकार हैं सबको पार और उसे खुद अधिक अच्छी तरह से साफ और हमारे और ठाकुर जी के मंदिर में भी जो अलंकारिक तैयारी है जिसे अच्छे से वस्त्र उन सबको निकाल कर और अच्छी तरह से ये पूजा को संपन्न हो, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु जी हो जाए इनका उद्देश्य ये था, उसके पहले इस रूप में नहीं होता था, न गुंडिका माध्यम भी इस रूप में होता था, नौकर क्या करा करके कर दिया बस समाप्त हो गया, जो एक झाड़ू लगा दिया बस खत्म हो गया, किंतु ये प्रकृति भावना में कृष्ण वृंदावन जा रहे हैं और मन को इस प्रकार से निर्मल करना है, ये सब भावना नहीं। मां को मेरे का शौक एकदम उलट उलट करके दूसरा प्रज की भावना में कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को खबर लगी कि खूब सुंदर से ये विदा हो गई। वो शाम को भक्तों के सहित लीला कर आएगा तुम भक्त बन संगे देखी से उत्पन्ता हेरा पंचमी रंग। हेरा पंचमी का जो उत्सव है रंग है उसको देखने के लिए महाप्रभु जी की बड़ी उत्कंठा हुई। महाप्रभु जी ने कहां पर यह हुआ, लीला कहां हुई, ये लीलाचल में हुई ना सुंदराचल में? उसने काशी जी के प्रभु ने बहु आदर कर लिया स्वर्ण कह हर स्थान बताई जाए। ऊपर में कहा जाए लीला चले आई जा, फिर वो कहा सुंदराचल में शाम को चले आए, इसलिए आए लीला यहाँ होगी। लीला होने के बाद में तब फिर वहां पर लक्ष्मी जाएंगे सुंदरा, फिर सात आठ में सभी लोग जाएंगे, ये होगी आज रात में। लीला आज हो गई शाम से ही लीलाचल में ये सिंह दरवाजा है, उसी के सामने में ये लीला है, उसके स्थान पर दरवाजे सिंह दरवाजे के पास में ऊपर में महाप्रभु जी को और उनके परिकरों को रामानंद शिवा जी और जितने भी नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य इन सब सब लोगों को ऊपर में बैठा दे जहाँ से कि बातें भी सुनी जा सके और सब उसमें रखा साधन कर सके। महाप्रभु जी वहां पर बैठ गए। रस विशेष प्रभु सुनित हरि रघुवंश किसत हाथ या प्रभु स्वरूप दुखी रघु सब गोस्वामी थे। इन्होंने पूछा जैसे कि ये है भारत कौन निरंजन निरातन जहाँ पर उनका मंदिर है वो है द्वारकापुरी में कृष्ण विराजते हैं वसुदेव नंदन और देवकी नंदन के रूप में और सत्यभाम आरोपिणी के प्रियतम के रूप में वहां पर विराजते हैं। साथ साथ उनके पुत्र भी हैं, किसी के पिता किसी के बाबा किसी के कुछ वो लगते हैं। यद्यपि जगन्नाथ पर द्वारका बिहार सहज प्रकट करे परम उदार तथापि बसर मध्य है एक बार वृंदावन देखी से तार उत्तम था जैसे कि वहां रखते हैं भीतर भीतर उनकी उत्कंठा तो सब सुने रहती है। शरीर द्वारका पुरी में है बड़ी बड़ी उदार लीलाएं भी करते हैं, कभी सत्यभामा को भी मनाते हैं कभी रुक्मिणी को भी मनाते हैं कभी और सब लीलाएं करते हैं, कभी नाती पोतियों को गोद में लेकर के उन्हें भी खिलाते हैं, बहुत तरह की लीलाएं करते हैं वहां पर। कभी युद्ध लड़ने के लिए भी जाते हैं किंतु ये सब उनका बाहरी दिन रात रात के दिन झूले दिन रात वो बड़े विरह में व्याकुल रहते हैं गोपियों के। जिस समय कोई काम नहीं रहता है तो विरह बढ़ता है, विरह रात में बढ़ता है, गर्भ कराते हैं किंतु यहां रात भी और एकांत मिला बस रोते कलपते हुए रहा है कहते हुए कुछ बात के माता पिता और पत्नियों के लिए होता है। इसलिए अब रहा नहीं जाता तो वर्ष में एक बार उत्कंठा होती है जब वृंदावन में जाए जाते हैं। महाप्रभु पूछ रहे हैं प्रश्न, अच्छा ठीक है जाए रथ की यात्रा के स्थल से वो जाते वहां पुष्पवाटिका यहां पर आज भूमि है चारों तरफ से घिरा हुआ हाथी घोड़े हैं समस्त है अपने काम करते 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 होता है तो एक दिन के लिए तो जरा इधर उधर कुछ दिनों के लिए घूम आए तो कहते हैं कि वहां पर जाते तो हैं किंतु ये बतलाओ जो अपनी प्रिया जो लक्ष्मी जी हैं उनको साथ लेकर के क्यों नहीं जाते।
भैया को तो ले लिया, बहन को भी सुभद्रा को ले लिया, लक्ष्मी जी को क्यों ले लिया। इसी के रूप में इसी के प्रश्न यही से आरंभ होता है। यहाँ पर लक्ष्मी जी को सजाया है, लक्ष्मी जी को तरह तरह के आभूषण